एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रीयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। सर्वोच्च न्यायालयेन प्रधान न्यायाधीशै चोलेन्द्र शमशेर जबराई इत्यस्मिन् आक्षिप्तस्य महाभियोगस्य निलम्बन निराकरणात्मकै संसद सचिवालयस्य पत्रे किञ्चित् स्पष्टं विधातव्यमिति कथनानन्तरं संघीय संसद महासचिवाय पत्रं लिखितं वर्तते। प्रधान न्यायाधीशस्य जबराई इत्यस्य निलम्बन निरसन सम्बद्धस्य पत्रस्य प्राप्ति अनुपदमेव सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां ह्य उपविष्टेन पूर्वोपवेशेन पत्रे किञ्चित् स्पष्टं विधातव्यमिति निर्णयनम् अनु सर्वोच्च संघीय संसद महासचिवाय पत्रमिदं लिखितमस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन गत विक्रम वर्षस्य फाल्गुन मासस्य प्रथमे दिवसे पञ्जीकारितस्य महाभियोग प्रस्तावस्य सम्बन्धी महाभियोग परामर्शन समित्या प्रतिनिधि सभायां प्रस्तुतम् इत्युक्तेन प्रतिवेदनेन सम्बद्धाय प्रक्रियाया निरन्तरता इदानीं विद्यमाना वर्तते न वा नवीन प्रतिनिधि सभायां प्रस्तावोऽयं प्रस्तुष्यते नवेति च स्पष्टं विधातव्यमिति पत्रे उल्लिखितमस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य पत्रे महाभियोग प्रस्ताव तात्कालिक प्रतिनिधि सभा कार्यकालस्य समाप्ति दिनांकेभ्य निष्प्रभावी जातो न वा निर्वाचनस्य दिनांकानां नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाया कार्यप्रारम्भावस्य च अवस्थायां कस्या सांविधानिक्या वैधानिक्याश्च व्यवस्थाया आधारेण महासचिवेन महाभियोगो निष्प्रभावी अभूदित्युल्लिखितमिति स्पष्टं विधेयमिति उल्लिखितं वर्तते। सर्वकारेण प्रधान न्यायाधीशै चोलेन्द्र शमशेर जबराई इत्यस्मिन् आक्षिप्तस्य महाभियोगस्य प्रस्ताव जीवितोस्थिति ज्ञापितं वर्तते। संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालय गतदिने आयोजितै पत्रकार सम्मेलने संचार सूचना प्रविधि मन्त्री सर्वकारस्य प्रवक्ता च ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की महाभियोग सार्वभौम सम्पन्नाय संसद सम्पत्तिर स्थिति हेतोः आगामिन्यां प्रतिनिधि सभायां विमृश्य विषयेऽस्मिन् निर्णय अवाप्स्यति इति समस्पष्टयत्। असौ अवोचत् महाभियोग सम्बद्धं प्रस्तावं प्रतिनिधि सभायां विमृश्य निर्मितं प्रतिवेदनं अतः परं संघटयिष्यमाणां प्रतिनिधि सभायां विमृक्षते। प्रधान न्यायाधीशै चोलेन्द्र शमशेर जबराई इत्यस्मिन् आक्षिप्तस्य महाभियोगस्य निलम्बन निरसनकारिण संसद सचिवालयस्य पत्रस्य विरूद्धे सर्वोच्च न्यायालय आदेशाभियाचन निवेदनं पञ्जीकारितं वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयस्य बार एसोसिएशन संघस्य अध्यक्षेण वरिष्ठाधिवक्त्रा पूर्णमान साक्येन उपाध्यक्षेण मुकुन्द प्रसाद पौडेलेन सचिवेन ऋषिराम घिमिरे विदेन कोषाध्यक्षेण विनोद कुमार कार्किणा च अवैधानिक रीत्या क्षेत्राधिकारात् बहिर्गत्वा संसद सचिवालयस्य महासचिवेन प्रेषितस्य पत्रस्य विरूद्धे सर्वोच्च न्यायालयस्य सांविधानिक न्यायपीठे निवेदनमिदं पञ्जीकारितं वर्तते। निवेदने भ्रष्टाचार कार्यक्षमताभाव दुराचरण प्रवृत्तिन् आरोपन् आक्षिप्य जबराई इत्यमुं विरूद्ध महाभियोग प्रस्तावं प्रस्तुत्य निलम्बनं विहितं परं संघीय संसद महासचिवेन पत्रलेखनेनैव महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रियो न भवतीति उल्लिखितं वर्तते। निवेदने एतस्य पत्रस्य अनिरसनं यावत् क्रियान्वयनं न कर्तुं न कारयितुमपि अन्तरिमादेश अभियाचितो वर्तते। तत्पूर्वं संघीय संसद सचिवालयेन प्रधान न्यायाधीशै चोलेन्द्र शमशेर जबराई इत्यस्मिन् आक्षिप्त महाभियोग निष्प्रभावी जातुस्थिति उल्लिख्य प्रधान न्यायाधीशाय जबराई इत्यस्मै विभिन्नेभ्य षड्भ्यो निकायभ्यश्च पत्रं प्रेषितम् आसीत्। संघीय संसद सचिवालयस्य महासचिवेन डाक्टर भरतराज गौतमेन राष्ट्रपति कार्यालयाय प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयाय सांविधानिक परिषद कार्यालयाय सर्वोच्च न्यायालयाय न्याय परिषदि प्रधान न्यायाधीशाय चोलेन्द्र शमशेर जबराई इत्यस्मै महाभियोग निष्प्रभावी जातुस्थिति ज्ञापन पुरस्सरं पत्रं प्रेषितम् आसीत्। नेपाल बार एसोसिएशन संघेन निलम्बितस्य प्रधान न्यायाधीशस्य चोलेन्द्र शमशेर जबरा इत्यस्य निलम्बन पत्रं निष्प्रभावी विधाय सार्वभौम संसद क्षेत्राधिकारी हस्तक्षेपो विहित इति निष्कर्ष प्रकाशितोऽस्ति। संघस्य अध्यक्षेण गोपाल कृष्ण घिमिरे विधेन महासचिव पदीयाय अंजिता खनालेन च सार्वजनिक कृताय विज्ञप्तौ शून्य प्रभावितं पत्रं न क्रियान्वितुं संघेन सह सम्बद्धानां निकायानां ध्यानाकर्षणं च कारितमस्ति। सर्वकारेण अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थे दिवसे सम्पन्नं निर्वाचनं सफलयितुं स्वस्व क्षेत्रात् भूमिकां निर्विहुडवद्भ्य सर्वेभ्य धन्यवाद व्यक्तोऽस्ति। अस्यैव मासस्य विंश दिवसस्य मन्त्रिपरिषद निर्णयान् सार्वजनिकर्तुं ह्य सिंहप्रासादे आयोजिते पत्रकार सम्मेलने संचार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रतिनिधि सभाय प्रदेश सभानां च सदस्यानां निर्वाचनं सफलतापूर्वकं सम्पादितम् इत्यालक्ष्य निर्वाचन आयोगाय सम्पूर्ण मतदान दातृभ्य राजनीतिक दलेभ्य कर्मचारीभ्य सुरक्षा निकायभ्य संचार माध्यमभ्य नागरिक समाजाय निर्वाचनी सहयोग प्रापकेभ्य अन्यभ्य सर्वेभ्यश्च सर्वकारण धन्यवाद व्यारितु स्थिति अज्ञापयत। मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा अद्य धान्यस सविधि पूजनेन दानेन च धान्य पूर्णिमा पर्व समायुज्यमानं वर्तते। अद्यैव नवान्न प्राशनं च विधेयमिति धर्मशास्त्रविद् प्राध्यापक डा रामचन्द्र गौतम निगदति। अद्य धान्य प्रवेशनस्य प्रसन्नतायं नेवार समुदायेन युमरी पुण्य नामकं युमरी पूर्णिमा च समायुज्यते। अद्यैव किरात समुदायेन नवान्न जातं पितृन् समर्प्य उधौली पर्व च सोल्लासं समायुज्यमानं वर्तते। उपलक्ष्यस्मिन् शुभकामना सन्देशं ददत्या राष्ट्रपतिना विद्यादेवी भण्डारिण मौलिक पर्वोत्सवै सांस्कृतिक जातीय भाषिक विविधतां परस्परं संयोज्य सामाजिक सद्भावं अभिवर्धयितुं महत्वपूर्ण भूमिका निरुरास्तीति उक्तं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा शेरबहादुर देउवा भिदेन प्रदत्ते शुभकामना सन्देशे अनेन पर्वणा विविधतायुते नेपाली समाजे पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता भ्रातृत्वानं भावं अभिवर्ध्य राष्ट्रियकताम् अतिरिक्तं सुदृढीकर्तुं सहयोगो मिलतीति विश्वास व्यक्तोऽस्ति। एवमेव नेकपा माओवादी केन्द्रस्य अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः स्वकीय सन्देशे एतादृशै पर्वभि नेपालस्य सांस्कृतिक विविधतां सामाजिकीं सांस्कृतिकीं च ऐक्यबद्धतां सद्भावं सहिष्णुतां च संरक्षितुं प्रवर्धयितुं च सहायं मिलतीति विश्वासं व्यनक्ति। निर्वाचन आयोगेन अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थी दिवसे सम्पन्नस्य प्रतिनिधि सभाया प्रदेश सभानां च सदस्यानां निर्वाचनस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल्या पक्षे स्थानानि आवंटितानि सन्ति। प्रतिनिधि सभाया समानुपातिक पक्षे सर्वाधिक 34 सांसदा नेकपा एमाले दलेन प्राप्ता सन्ति। एवमेव प्रतिनिधि सभायां नेपाली कांग्रेस दलेन 32 माओवादी केन्द्रेण 14 राप्रपा दलेन 7 राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलेन 13 च सांसदा प्राप्ता सन्ति। निर्वाचन योगेन ज्ञापितं वर्तते। अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्थी दिवसे सम्पन्नस्य प्रतिनिधि सभाया प्रदेश सभानां च सदस्यानां निर्वाचनस्य अन्तर्गतं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल्या पक्षस्य मतगणनाय समाप्ति पश्चात निर्वाचन आयोगेन प्राप्त मतानां आधारेण प्राप्त स्थान संख्यां निर्धार्य सम्बद्ध राजनीतिक दलेभ्य ह्य पत्राणि प्रेषितानि सन्ति। प्रतिनिधि सभाया सप्तानैव प्रदेशानां च कृते समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल्या अन्तर्गतं राजनीतिक दलै प्राप्त मत संख्यां प्रतिशतं स्थान संख्यां च निर्धार्य न्यूनतोपि 1/3 महिलानां प्रतिनिधित्वेन सांसदानां नामानि परामृष्टं दलेभ्य पत्राणि प्रेषितानि सन्तीति आयोगस्य सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल अज्ञापयत। आयोगे दले अर्पिताय समानुपातिक पक्षस्य प्रत्याशिनम् अन्तरसूच्या आधारेण प्राप्त न्यूनतम मतसीमै दले समावेशी समूह संयोज्य प्राप्त स्थानेषु दिनत्रयाभ्यन्तरे नामानि परामृष्टं दलेभ्य पत्राचार विहितो स्थिति सहायक प्रवक्ता अर्याल अवोधयत। दलेभ्य नामावलीनां परामर्शनानन्तरं आयोगेन अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य 28 दिवसस्याभ्यन्तरे निर्वाचन परिणामस्य प्रतिवेदनेन सह स्वस्य प्रतिवेदनं राष्ट्रपति समक्षं प्रस्तुतं पूर्वकार्यं विहितमस्ति। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कथयति राष्ट्रस्य समृद्धये विकासाय च वर्तमान गठबन्धनस्य अभ्यन्तरादेव सर्वकार निर्मास्यते। प्रतिनिधिसभा सदस्यपदे नवनिर्वाचिताय कार्किणी वर्धापनं व्यङ्क्तुं ह्य संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालये आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री कार्की देशस्य समृद्धये विकासाय च वर्तमान गठबन्धनाय एव जनताया स्वीकृति प्रदत्ता स्थिति अवोचत्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारिणा समक्षं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्ष तपबहादुर मगर आयोगस्य गतार्थिक वर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तोत। शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपति भवने आयोजिते समारोहे राष्ट्रपति समक्षं आयोगस्य अध्यक्ष मगर नेपालस्य संविधानस्य अनुसारेण गतार्थिक वर्षस्य आयोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतीति राष्ट्रपति कार्यालयस्य प्रवक्ता सागर आचार्येण प्रकाशितं विज्ञप्तौ ज्ञापितं वर्तते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निगदति नेपाली भाषमाणानां सर्वासां मातृभाषाणां संरक्षणाय विकासाय च सर्वकारण सहैव सर्वेषां पक्षाणां सहकार्यम् आवश्यकं भवति। नेपाल भाषा मंका खलयल संस्था ह्य राष्ट्रपति कार्यालय आयोजिति सत्यमोहन जोशी नेपाल भाषा साहित्य पुरस्कार वितरण समारोह राष्ट्रपति भण्डारी एवं अवोचत।